In progress.
Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो कल के छुट्टी के साथ जो है वो आज के हम फिर क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। आज फिर रिज्यूम कर रहे हैं, सूरह अनआम की तफसीर पढ़ रहे हैं, मआरिफुल कुरआन की जिल्द नंबर 3 में से। और जो आखिरी बात चल रही थी वो आयत नंबर 72 यानी 72 से मुतअल्लिक ज़्यादा थी, अगरचे के पीछे की आयात से भी इसका ताल्लुक था कि वज़क्किर बिही, कि उन लोगों को आप कुरान मजीद के ज़रिए से नसीहत करते रहें, क्योंकि अगर वो नेकी के रास्ते पर नहीं आते, गुनाहों को नहीं छोड़ते, तो वो अपने किए के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, उसका निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला चलाने वाले हैं, अल्लाह ताला तारीफ करने वाले हैं। तारीफ से मुराद यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं कि क्या चीज़ फायदे की चीज़ है, क्या चीज़ नुकसान की चीज़ है। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने बना दिया ना दुनिया, तो खाली ये दुनिया ये नहीं बनाई कि बस चरंद परंद बना दिए और दरख्त बना दिए और ये बना दिए वो बना दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने जो है वो उसूल भी बनाए ना। ठीक है, जैसे कि खाने के लिए जो है वो सब्जियां बनाई। ठीक है, अब ये दुनिया के अंदर पत्ते भी बनाए, दुनिया के अंदर मिट्टी भी बनाई, लेकिन इंसान के गिजा के लिए अल्लाह ताला ने सब्जियां और फ्रूट बनाए। ठीक है ना, अब कोई कहे कि नहीं मैं तो मिट्टी खा करके अपना पेट भरूंगा, ठीक है, मैं तो पत्ते खा करके या जो है मैं फूल खा करके अपना पेट भरूंगा, या मैं जो हूं वो कांटे खा करके अपना पेट भरूंगा, तो उसको क्या होगा, उसका पेट भर जाएगा या उसको जो है वो सेहत मिल जाएगी? ठीक है, उसकी तो शायद भूख ही ना मिटे। अब वो कहे क्यों क्यों भाई, जब ये है मौजूद तो पत्ते खा के या कांटे खा करके मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है ना, क्यों क्यों भाई? ठीक है, तो अब उसका क्या जवाब उसको देंगे कि भाई दिस इज हाउ इट इज, अंग्रेजी में तो यही जवाब देंगे ना कि भाई यही है, ऐसा ही है। लेकिन कोई ईमान वाला होगा जो अल्लाह ताला को वाकई जानता है कि भाई अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह ने उसूल बनाए हैं, तो वो ईमान वाला उसको ये जवाब देगा कि अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तो तुम्हारे पेट का निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब तुम सब्जियां और फ्रूट खाओगे, ठीक है, या तुम किसी जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त पका करके खाओगे, तब तुम्हें तवानाई मिलेगी, तब तुम्हें सेहत मिलेगी, वरना तुम्हें बीमारी मिलेगी, वरना तुम्हें खराबी मिलेगी, तुम्हें नुकसान मिलेगा। अब वो कहे नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को कि मुझे उससे जो है वो नुकसान मिलेगा, मुझे इससे जो है फायदा मिलेगा। तो फिर अब आप उसको आगे से क्या कहेंगे? आप कहेंगे ठीक है, जाओ जाओ भाई, जाके करो जो करना है, तुम्हारी मर्जी करो। फिर वो करेगा, फिर उसको नुकसान होगा, फिर वो बीमार होकर के मर मर जाएगा या बहुत बुरी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, है ना भाई? ऐसा है कि नहीं है? क्या ऐसा है कि ऐसा नहीं है? अब कोई कहे कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, क्यों बनाया इस तरीके से कि नुकसान होता है कुछ चीजों से, कुछ चीजों से फायदा होता है, तो फिर आप उसको आगे से फिर आप उसको मजीद क्या कहेंगे? आप कहेंगे फिर ठीक है, तुम जो है वो इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, तुम अपनी एक अलग दुनिया बना लो जिसके अंदर तुम खुद जो है वो उसूल बना लो, फायदे और नुकसान के तुम खुद उसूल बना लो। क्योंकि जब तुम दुनिया क्रिएट करोगे, तुम अपनी दुनिया क्रिएट करोगे, तुम क्रिएटर होगे उसके, तुम खालिक होगे उसके, तो तुम ही फिर रूल्स डिफाइन करोगे ना, तुम ही उसके रूल्स डिफाइन करोगे ना। लेकिन ये दुनिया जिसमें तुम रह रहे हो, ये तो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, तो अल्लाह ने डिफाइन किया है ना कि ये फायदे की चीज है, ये नुकसान की चीज है। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, तो अल्लाह ने डिफाइन किया ना फायदा, और अल्लाह ने डिफाइन किया नुकसान, ठीक है। तो अब अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर फायदा है हमारा ये या हमारा नुकसान है? ये हमारा नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। ठीक है, जाए, अगर आपको नहीं मानना, आप जाके अपनी दुनिया बनाए ना फिर जा करके। जैसे कि किसी घर के अंदर कोई औलाद अपने माँ बाप से कहे कि मैं आपका उसूल नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं मानता, तो फिर पहले तो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बिल्कुल ही नहीं मानेगा तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? बिलाखिर के जाओ जाकर के तुम अपना घर बसाओ, राइट, तुम अपना निजाम बनाओ, तुम वहां पर जो है वो रूल्स डिफाइन करो जाकर के। भाई यहां पर तो हमारे घर में रह रहे हो, तो फिर तो हमारा रूल फॉलो करना पड़ेगा ना तुम्हें, ठीक है। तो इसमें कोई जुल्म ज्यादती वाली बात तो नहीं है भाई। अल्लाह ताला ने खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तो मौत और जिंदगी बनाई ही इसलिए, हमने तो दुनिया बनाई ही इसलिए कि हम जो है ना वो तुम्हारी आजमाइश करें कि तुम रूल्स को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अय्युकुम अहसनु अमला का यही मतलब है कि तुम रूल्स को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो हमारे बनाए हुए रूल्स को, क्योंकि तुम हमारी दुनिया में रह रहे हो, हमने ही दुनिया भी बनाई, हमने ही तुमको भी बनाया। अब कोई कहे नहीं ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है, क्यों बनाया इस तरीके से, तो भाई नहीं मानते तो जाओ जाके अपनी बनाओ ना फिर, ठीक है। तो भाई ये है हकीकत, समझती हैं कि नहीं समझती हैं? मर्द हजरात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ठीक है, तो जब आप दावत और तबलीग का काम कर रहे होते हैं, दूसरों को समझा रहे होते हैं कि अल्लाह के बंदे नेक बन जाओ, अल्लाह के बनाए हुए उसूल पे अमल करना शुरू हो जाओ, तो हमारे जहन में तो कम से कम ये बात रहनी चाहिए ना कि ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं और अल्लाह के बनाए हुए उसूल हैं, ठीक है। अब अगर तुम अल्लाह को नहीं मानते तो फिर जाओ जाकर के अल्लाह को मानने की कोशिश शुरू करो कि भाई क्या अल्लाह है कि अल्लाह नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह तुम अल्लाह को मानते हो तो फिर ये मत कहो ना कि भाई उसूल मेरे चलेंगे, रहूंगा मैं अल्लाह की दुनिया में लेकिन उसूल मेरे चलेंगे। हम यही मखमसा है हमारा, हमारा यही अजीब व गरीब किस्म की हम कंफ्यूजन के शिकार हैं। हम अमेरिका में रहते थे ना, तो वहां पे हमने एक टर्म सुनी थी, ठीक है, एक टर्म सुनी थी कि जो अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन लोग जो है ना जाके मूव हो गए, तो अब उनके जो बच्चे वहां पे पैदा हुए ना, तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि यार क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा दीन है, क्या हमारा करने का काम है, क्या नहीं है करने का काम। तो जाहिर है एक नए कल्चर में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पे जाके रहते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके लिए एक टर्म ईजाद हो गई ना, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, ठीक है, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, ABCD। अब वो हंसी मजाक में जो है वो लोग ABCD बोलते हैं उन लोगों को जो वहां पे बॉर्न हुए हैं, लेकिन दे आर कंफ्यूज, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ठीक है। हम सबका यही हाल है, हम सबका यही हाल है, ठीक है ना। तो कोई अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम है, तो कोई पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम है PBCD, तो कोई इंडियन बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम है IBCD, कोई सऊदी बॉर्न कंफ्यूज मुस्लिम है SBCD। वी आर ऑल कंफ्यूज, वी डोंट नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग एंड वॉट इज द बेसिस एंड फंडामेंटल ऑफ एनी थिंग। वी कैन नॉट ज्वाइन द डॉट्स, कहते हैं ना आप, भाई नुकते मौजूद हैं, अब आप उनको खाली सीधा सीधा डॉट को ज्वाइन भी कर लें ना डॉट्स को, तो आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी, है ना। वो आपने कभी खेला है वो वाला, वो अखबारों में भी आता था, बहुत सारे डॉट्स लगे होते थे, उन डॉट्स को अगर आप सही तरीके से ज्वाइन करें तो पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। लेकिन अगर किसी को डॉट्स ज्वाइन करने नहीं आए तो फिर तो पिक्चर नहीं बनेगी ना उसके सामने, पिक्चर तो बन के नहीं आएगी जो उस डॉट्स में किसी ने पिक्चर बनाई है। तो अब तो वो कंफ्यूज ही रहेगा ना, मतलब क्या है, आप डॉट्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, आप डॉट्स को सही क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि पिक्चर तो आपके सामने आए ना। तो हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारा मामला है, वी आर ऑल समथिंग BCD, ठीक है, वी आर ऑल BC समथिंग, देसी हैं या BC मुस्लिम है, BCM, वी आर ऑल BCM वेयर एवर वी आर बॉर्न, इसलिए कि हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं करी, हमने इसका इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं करी, हमने सोचने की कभी कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो चूंकि हमने अल्लाह को नाउज बिल्ला, यानी बहुत ही बेअदबी वाला ये मामला है, लेकिन बेअदबी तो सब सारा सारा मामला ही बेअदबी का है, तो फिर अब बात समझाने के लिए भी बेअदबी का कोई लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। हम कहते हैं ना नाउज़ बिल्ला, उर्दू जुबान में कहते हैं ना, घास नहीं डाली हमने, हमने किसी को घास ही नहीं डाली, ठीक है। तो हकीकत यही है, नाउज बिल्ला सुम नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला माफ करे इन अल्फाज के इस्तेमाल के ऊपर, कि हमने अल्लाह को घास ही नहीं डाली, हमने अल्लाह के दीन को घास ही नहीं डाली। तो जब घास भी नहीं डालेंगे तो फिर क्या खाक समझ में आएगा, क्या खाक समझ में आएगा कि हम क्यों यहां पर रह रहे हैं, क्या हमारे मकसद जिंदगी है, क्या सही है क्या गलत है। जब खुद को समझ में नहीं आएगा तो अगले बंदे को क्या समझाएंगे फिर, जब खुद को समझ में नहीं आएगा तो अगले बंदे को क्या समझाएंगे। फिर वही होता है, आमाली दीन चल रहा होता है, दाढ़ियां भी उग रही होती हैं और जो है वो शलवार कुर्ते भी पहनना शुरू हो जाते हैं और कुछ आमाल भी करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि क्या है मसला, क्या है हकीकत, क्या है करना क्या है। और जाहिर सी बात है जब खुद समझ में नहीं आ रहा होता तो फिर अगले बंदे को भी समझाना हमारे लिए नामुमकिन होता है। ठीक है, तो हमें समझने की जरूरत है, वही बात पलट के आ जाती है, इल्म हासिल करना, क्योंकि इल्म से ही बात समझ में आती है, जाहिल इंसान को कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो हजरत ने यहाँ पर जो हमारे मसाइल लिखे थे तो वो हम पढ़ रहे थे कि पेज नंबर 374 के ऊपर, कि इस आखिरी आयत से ये भी मालूम हुआ कि जो लोग आखिरत से गाफिल सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर मगन हैं, उनकी सोहबत व मजालिसत यानी उनकी मजलिस में बैठना या उनकी सोहबत में बैठना भी इंसान के लिए मुहलिक है, हलाक कर देने वाली चीज है। तो इसका अंजाम यह है कि उनकी सोहबत में रहने वाला भी इस अजाब का शिकार होगा जिसमें वो मुब्तला है। ठीक है, क्योंकि सोहबत का असर होता है, आप जिनके साथ बैठते हैं आप उनसे बच नहीं सकते, इल्ला ये कि आप दिल में नफरत के साथ उनके बारे में नफरत लेके बैठे, तब तो उनका असर आपके ऊपर शायद ना पड़े। अगर वाकई आपके दिल में उनके गलत कामों की नफरत है, उनके लिए नफरत ना, उनके गलत कामों के लिए नफरत तो हो ना कम से कम, फिर तो शायद आप बच सकते हैं। ठीक है, वरना तो आप नहीं बच सकते उनके असर से। बिल्कुल यही मामला फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, बिल्कुल इस कॉइन का फ्लिप साइड भी बिल्कुल हकीकत है, इसका ऑपोजिट साइड। इसका ऑपोजिट साइड के अगर इस पैराग्राफ को आप रिवर्स कर लें, इस पैराग्राफ को आप रिवर्स कर लें तो क्या होगा कि इस आखिरी आयत से ये भी मालूम हुआ, क्योंकि जब एक साइड ट्रू होती है तो उसका रिवर्स भी ट्रू होता है, जब ही अल अशियाओ तोरफो बे अल्दादिहा, ये बाकायदा एक उसूल है, अरबी जुबान के अंदर भी मौजूद है और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला भी उसूल है, लॉजिकल उसूल भी है, यूनिवर्सल उसूल भी है। ठीक है, कि जो जो ऑपोजिट साइड होती है वो भी हकीकत होती है किसी उसूल की। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसूल बयान हुआ था, तो अब इसका ऑपोजिट हम देखते हैं कि इससे यह भी मालूम हुआ कि जो लोग आखिरत से गाफिल नहीं होते, जो लोग आखिरत से गाफिल नहीं होते और सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर मगन नहीं होते, उनकी सोहबत व मुजालसत भी इंसान के लिए हयात देने वाली होती है, हलाक करने वाली नहीं होती बल्कि जिंदगी देने वाली होती है। तो इसका अंजाम ये है कि उनकी यानी नेट रिजल्ट, इसका अंजाम लफ्ज जरा नेगेटिव सा लफ्ज है, तो इसका जो है वो फायदा ये है, अंजाम का ऑपोजिट फायदा बना ले, इसका फायदा ये है कि उनकी सोहबत में रहने वाला भी उस इनाम का हकदार होगा जिसके वो हकदार होते हैं, उस इनाम का हकदार होगा जिसके वो हकदार होते हैं। ठीक है ना, कोई इसका जो है वो क्या चैलेंज करके दिखाए इस वाले उसूल को। ठीक है, अगर आप इस उसूल को समझ गए कि आखिरत से गाफिल लोगों की सोहबत और मुजालसत से हलाक होता है बंदा, तो इसका तो इनकार कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जिद भी जो होती है वो भी किसी उसूल की 100% सही होती है। अब हम देख लें कि हम अपने लिए और अपनी औलादों के लिए हमने किस किस्म की सोहबत का इंतजाम करके रखा हुआ है, किसके लिए हम जो है वो मेहनतें करते हैं और किसको अहम समझते हैं और किसको अनअवॉइडेबल समझते हैं अपनी औलादों के लिए। ठीक है, हम जिन चीजों को अपनी औलादों के लिए अनअवॉइडेबल समझते हैं, लाबुद्दा मिन्हु, अरबी जुबान की टर्म होती है लाबुद्दा मिन्हु, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, इसका मतलब ये होता है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ठीक है, तो हम फिर उसके बहाने से, उसके बहाने से अपनी औलादों को फिर किस सोहबत में धकेल रहे होते हैं, तालीम का जेवर का है ना, वो गुजारा नहीं है उसके बगैर, डिग्री के बगैर गुजारा नहीं है, हालांकि डिग्री उसके उसके फिक्र के साथ भी हासिल की जा सकती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी सोहबत की प्रायोरिटी चूंकि होती ही नहीं है ना, आखिरत की प्रायोरिटी हमारे लिए होती नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी की, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है वो हम डिग्री और जो सो कॉल्ड मौजूदा तालीम का सिस्टम है, सो कॉल्ड मौजूदा तालीम का जो सिस्टम है, तो हम इसी को नंबर वन प्रायोरिटी बना करके अपनी औलादों को उस सोहबत में धकेल देते हैं जो कि उनके लिए मोहलिक होती है, जो कि उनके लिए मोहलिक होती है, ठीक है। तो भाई हम दूसरी सोहबत में क्यों नहीं धकेलते, क्योंकि हमारे लिए लाबुद्दा मिन्हु अनअवॉइडेबल आखिरत की फिक्र हमारे लिए नहीं है, आखिरत की फिक्र हमारे लिए अनअवॉइडेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम अच्छी सोहबत के लिए मेहनत ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, फिक्र ही नहीं करते, बस फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, फलानी डिग्री मिल जाए, फलानी जगह के उसको जो है वो सर्टिफिकेशन मिल जाए, दैट्स ऑल वी थिंक अबाउट, ठीक है। और दैट्स द नंबर वन थिंग दैट वी थिंक अबाउट, बाकी चीजें दीन और आखिरत और नेकी और ये सारी चीजें जो है वो तो सेकेंडरी हैं या टर्शरी हैं या पता नहीं कौन से वाले नंबर पर आती, जाहिर है फिर हलाक हो रही होती है हमारी पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो हलाक हो चुकी है इल्ला माशाल्लाह, और बाकी जो रह गए वो आग चल रहे हैं हलाकत की तरफ, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। छोटा बच्चा होता है वो हमें जरा नेक नजर आता है क्योंकि वो तो मासूम होता है ना, वो हमें नेक नजर आता है तो हम समझते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये नेक है, ये तो जो है नमाज भी पढ़ लेता है या ये तो कुरान भी पढ़ लेती है, ठीक है, तो ये ठीक है और ठीक रहेगी भी। अच्छा बड़े मजे का फिनोमेना, और ये कई लोगों के साथ बाकायदा जाती मामलात में भी सामने आता है, जाती बात करके भी सामने आता है और जनरल भी नजर आती है सारी बातें, कि जो बड़ी औलाद हो जाती है ना जरा सी 17-18 साल की हो जाती है ना, तो अब वो जब आज का जो माहौल है आज तो वो सोशल प्रेशर्स भी खत्म हो गए, मुसलमान रहने के सोशल प्रेशर्स होते थे पिछली जनरेशन के अंदर, ठीक है, कि अगर आप मुसलमान नहीं समझे जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके खानदान में मुश्किल हो जाएगी, लोग आपको ऑस्ट्रोसाइज कर देंगे, आपको जो है वो बेदखल कर देंगे या आपसे मिलना जुलना छोड़ देंगे और जो है ना वो पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो ये पिछली जनरेशन तक ये एक बड़ा मसला होता था। इस वजह से कोई दिल से काफिर होता भी था ना स्कूल कॉलेज के अंदर जा करके उल्टी सीधी चीजें पढ़ करके और उल्टे सीधे लोगों से मिलजुल करके काफिर हो जाते थे, इनकार करते थे, तो वो अपने इस इनकार को छुपाते थे क्योंकि उनको खौफ होता था कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा मुआशरे के अंदर। इस जनरेशन के अंदर तो ये खौफ भी तकरीबन खत्म हो रहा है, तकरीबन खत्म हो चुका है, अब कोई खौफ नहीं है, क्या कर लोगे भाई मेरा, क्योंकि उनको भी पता है कि माँ बाप भी कौन से पक्के मुसलमान हैं, वो हमें अगर हम कुफर का ऐलान कर भी देंगे तो माँ बाप भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, ठीक है, या अगर पढ़ भी गया तो क्या कर लेंगे, अगर हैं भी थोड़े से दीनदार मुसलमान तो क्या कर लेंगे, हमारा कर तो कुछ भी नहीं सकते। तो अब खुल करके ऐलान कर रहे हैं कि नहीं आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस रिलीजन, राइट, अब मैं नहीं मानती इन चीजों को, मैं नहीं मानता इन चीजों को, ठीक है। तो अब वो सोशल क्या लिखा, अब कुफराना अकायद रखने का सोशल प्रेशर होता है कुछ सोशल सर्कल्स के अंदर, बिल्कुल सही लिखा आपने, अब तो बाकायदा आपको एक्सेप्ट किया जाता है, कितने ऐसे सोशल सर्कल्स हैं यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होते हैं और दूसरे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसे ग्रुप समझा जहां पे अगर आप कुफराना अकायद का इजहार करेंगे तो यू विल बी एक्सेप्टेड, फिर तो आप उनके यहाँ कबूल कर लिए जाएंगे और मुसलमान मुआशरा मुसलमान घराना मुसलमान फिक्र उन वो तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करते अब आपके जिंदगी के अंदर, आपको कोई लेना देना उनसे है ही नहीं, तो आपको कि क्या फिक्र करने की जरूरत है कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने अपने कुफर का ऐलान कर दिया। तो जब 16 साल का बच्चा होता है, 17 साल की बच्ची होती है, 18-19 साल, तो वो फिर कहती है यार आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस ना, तो अब वो ऐलान कर देती है, ठीक है। अब जब वो ऐलान कर देती है या अब ऐलान कर देता है, ठीक है ना, ये सारे केसेस सारे हम सामने हमारे, कोई एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अब जो है ना वो जो कल्चरली मुस्लिम पेरेंट्स होते हैं, पता होता तो कुछ पेरेंट्स को भी नहीं होता ना कुछ कल्चरली मुस्लिम पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन कल्चरली मुस्लिम पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, ये मेरे बच्चे ने क्या कर दिया। ठीक है, अब उनको प्रॉब्लम हो गई कि यार मेरे बच्चे ने तो एथिज्म का ऐलान कर दिया, मेरे बच्चे ने जो इस्लाम का इनकार कर दिया। ठीक है, अब वो फिगर पड़ती है, कुछ जो थोड़े कल्चरली मुस्लिम पेरेंट्स होते हैं उनको अब फिगर पड़ जाती है, जो बिल्कुल पहले ही एथियस हो चुके होते हैं पेरेंट्स, उनको तो इसकी भी फिक्र नहीं होती, जाहिर सी बात है, लेकिन बाकियों को फिगर पड़ जाती है। अब मजे की बात यह है, बल्कि इबरत की बात यह है कि उनको फिक्र जो होती है ना, वो इस बच्चे की तो हो जाती है जिसने ऐलान कर दिया काफिर होने का, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो उनके अभी छोटे बच्चे हैं, जो उम्र में अभी छोटे हैं, वो भी तो इसी लाइन पर हैं, वो भी तो इसी सोहबत में जा रहे हैं, वो भी तो वही चीजें पढ़ रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही लोगों के साथ जो है वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो भाई अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, जो छोटे बच्चे हैं आपके अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन सिंस दे आर ऑन द सेम पैथ, वो अभी उसी रास्ते के ऊपर हैं, तो कल को उन्होंने भी ऐलान कर दिया तो फिर क्या करोगे तुम? क्योंकि सोहबत का असर, ये जो बात यहां पर हो रही है कि आखिरत की के से गाफिल लोगों और दुनिया की जिंदगी पर मगन लोगों की जो सोहबत का असर है, तो ये तो उनको अंदर से खत्म कर रहा है ना। इसी वजह से एक स्कूल के टीचर साहब हमें बताने लगे कि जी हम बड़े परेशान हैं कि जब छोटी उम्र छोटे ग्रेड्स के बच्चे होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, हम उनको दीन पढ़ाते हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से दीन को सुन भी लेते हैं और बड़ा उनका अच्छा एक्सेप्टेंस नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े ग्रेड्स पर आते हैं तो वैसे वैसे वो दीन बेजार होना शुरू हो जाते हैं, राइट? हालांकि हम उनको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा रहे होते हैं, इतनी इस्लामियात पढ़ा रहे होते हैं, इतना जो है वो दीन के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन उनमें दीन बेजारी आनी शुरू हो जाती है। भाई यहाँ पर अक्सरियत की बात हो रही है, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, कोई ना कोई रीजन होता है एक्सेप्शंस का, लेकिन अक्सरियत का मामला तो ऐसे ही चल रहा है ना। कितना अपने आप को धोखा दोगे, कितना अपने आप को धोखा दोगे कि नहीं एवरीथिंग इज ग्रेट, राइट? बस करो यार अब धोखा देना अपनों को भी और दूसरों को भी। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट ग्रेट, ठीक है ना, चंद लोगों को देख करके आप जो है वो सबके ऊपर उसका कयास नहीं कर सकते। तो अब जो अगली नस्ल आ रही है तो उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? सिर्फ उसकी फिक्र कर रहे हो कि जिसने एथियज्म का अलग ऐलान इजहार कर दिया है, सिर्फ उसकी फिक्र कर रहे हो? उनकी फिक्र जो है वो देखी जाएगी जब 10 साल के बाद वो भी ऐलान करेंगे, तो फिर उनकी देखी जाएगी। तो हमें कुरान मजीद के अंदर और इसके वास्ते से इसकी तफसीर के अंदर हमें यह सिखाया जा रहा है कि ये उसूल है, ठीक है, ये उसूल है, तो अपने छोटे बच्चों से जो है वो उसकी फिक्र करनी शुरू करनी है। ठीक है, देखिए दुनिया कुफर जो है वो कितना मेहनत कर रही है इसके ऊपर और कितना ज्यादा प्रिंट, कितना ज्यादा डोमिनेटिंग माहौल है, इतना डोमिनेटिंग माहौल है कि जिसके अंदर खुसूसन बच्चों के दिलों को मायल करना गुनाह की तरफ, और बच्चों में से भी जो है ना जो लड़के होते हैं उनको तो खेल कूद के अंदर मायल करना, ठीक है, जिनमें से के होगा कि जी ये काफिराना खेल नहीं है, ये तो जायज है, ये तो कुफर वाले खेल नहीं है तो जायज है, तो उन उन इस किस्म के खेलों की तरफ लड़कों को मायल करते हैं ताकि उनका वक्त जाया हो, वो किसी काम के नहीं लगे, किसी काम के नहीं रहे, और बिल्कुल जो है ना वो बेकार किस्म के, यानी मर्दानियत तो उनमें से खत्म हो जाए। तो मर्दों की तो के ऊपर जो मेहनत हो रही है खुसूसन लड़कों के ऊपर, वो तो इस ये मेहनत हो रही है कि उनकी मर्दानियत खत्म हो जाए ना बिल्कुल, जो कुछ वो फितरती तौर पर लेके पैदा हुए थे वो तो खत्म हो जाए, लेकिन लड़कियों के ऊपर तो इतनी मेहनत हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है कि सिर्फ उनमें से निस्वानियत खत्म ना हो जाए बल्कि वो बिल्कुल दीन के खिलाफ हो जाए, बिल्कुल वो उसूलों के खिलाफ हो जाए। ठीक है, हम आपको बता नहीं सकते, मैं इस वक्त क्लास में बोलना नहीं चाहता कि क्या कुछ जो है वो याजिस देख करके आया यार। ठीक है, तो हम वी आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, हम दीन के बारे में थोड़ा फिक्र कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर की क्लास ले भी रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, लेकिन जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो फिर हमारी अगली नस्ल नहीं बनेगी मुसलमान। आपके दीन पढ़ने से और आपके कुरान की तफसीर पढ़ने से आपकी नस्लों में कुरान और दीन खाली नहीं आएगा जब तक आप जो है वो इन उसूलों को नहीं समझेंगे। ठीक है, होगा यही कि आपकी इमारत जो है वो अच्छी सी बन जाएगी, पीछे नीचे से बुनियाद, नई नसल ने नहीं बनना है। देखें अभी हमारे एक दोस्त हैं माशाल्लाह, लंबी सी सफेद दाढ़ी है उनकी, बड़े बारिश और बारो बुजुर्ग नजर आते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो वो किसी मॉल में जा रहे थे तो उन्होंने फिर बताया कि ये उनके उनके साथ जो दूसरे साथी थे उन्होंने बताया कि कोई सीरियन कपल था वहां पर शाम का, बिलाद शाम, राइट, वहां का कोई फैमिली थी। तो वो बंदा जो था ना उसने इनको रोका, उनसे कहा कि देखें आप जो है ना बिल्कुल मेरे अब्बू की शक्ल के हैं, मेरे अब्बू बिल्कुल आप जैसे लगते थे, यानी सफेद लंबी दाढ़ी थी उनके अब्बू के। फिर शायद उसने बकायदा अपने फोन के अंदर अपने बाप की तस्वीर भी दिखाई, देखो मेरे बाप बिल्कुल आपके जैसे लगते थे, ठीक है। वो बताने लगे, हमारे दोस्त बताने लगे कि उनकी जो बीवी थी ना, ये जो साहब थे वो खुद तो शायद क्लीन शेव थे, वो खुद अपने अब्बा जैसे दाढ़ी वाड़े वाले नहीं थे, पता नहीं क्लीन शेव थे या नहीं थे मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी बेगम जो है वो कुर्ते में थी और अबाया उनका पूरा सेट था, लेकिन उनके साथ उनकी बच्ची भी थी, और उनकी बच्ची जो थी ना उसकी टांगे भी खुली हुई थी, यहाँ सऊदी अरब के अंदर टांगे खुली हुई थी, स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। तो देखें एक जनरेशन के अंदर कैसी तब्दीली आ रही है, हालांकि माँ बाप बड़े दीनदार नजर आ रहे हैं, और जो दादा साहब थे वो तो बहुत, और भी दादा कोई पता नहीं कोई शेख वेख होंगे कोई, लेकिन अगली नस्ल में ये दीन नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा अगली नस्ल में ये दीन, क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जो असल करने का काम था ना वो नहीं किया, खाली जो है ना वो ऊपर लेपा पोती के ऊपर मेहनत कर ली, बुनियादों के ऊपर मेहनत नहीं करी। बुनियादों के ऊपर मेहनत तो कुफर कर रहा है, कुफर कहां मेहनत कर रहा है, बुनियाद पे मेहनत कर रहा है। हम बुनियाद पे मेहनत नहीं कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा अगर कर रहे हैं, वरना तो अक्सर लोग तो वो भी नहीं कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो सिर्फ जाहिर के ऊपर मेहनत कर रहे, ठीक है। अच्छा उन्होंने क्या लिखा है, एजुकेशन सिस्टम इन फेमिनिज्म हैज मेड आवर डॉटर्स बिलीव दैट स्टेइंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, हैविंग किड्स एंड देयर अपब्रिंगिंग इज अ लो थिंग टू डू, एंड डूइंग इट इज वेस्टिंग टाइम एंड यूजलेस। तो हमने जो है वो तो ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम यानी कुफर का जो तालीमी निजाम है, जो फेमिनिज्म का जो पूरा का पूरा मीडिया है, वो तो अपनी मेहनत कर रहा है बुनियादों के ऊपर, हम बुनियादों पे मेहनत नहीं कर रहे, हम जो है वो रिचुअल्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक दीन, आमाल दुरुस्त कर लो, तुम्हारे अकायद जो है वो भाड़ में जाए, तुम आमाल दुरुस्त कर लो, ऊपर से जो है वो जाहिरी तौर पर अपना कुछ ओढ़ना बिछोना फलाना ऐसे कर लो, लेकिन तो हम वी डोंट केयर। पिछली क्लास में किसी ने कहा था ना किसी की नीयत का हमें क्या पता, बड़ी अच्छी बात है भाई, किसी अगर हम उसको इस नजर से देखें, नीयत का तो कोई पता ही नहीं, तो नीयत पे मेहनत करने की जरूरत ही कोई नहीं है, नीयत का तो पता नहीं, नीयत तो अल्लाह जानता है, तो नीयत पे तो मेहनत ही नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है भाई बुनियाद क्या है, बुनियाद तो नियत है ना, नियत कैसे बनती है, इंसान की सोच से बनती है, सोच जो है ना यही नियत होती है, ठीक है। आप नमाज पढ़ने से पहले क्या रट करके जो है वो नमाज की नियत कर रहे होते हैं ना, वही तो अन उसल्लिया लिल्लाह ताला, नहीं आपकी जो सोच होती है कि मैं ये वाली नमाज पढ़ रहा हूं, मैं इतनी जो है वो रिकत पढ़ रहा हूं, मैं इतनी जो है वो वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, सोच होती है ना नियत, तो नियत का किसी को नहीं पता, लेकिन सोच पे तो मेहनत हमें करनी है ना, खुसूसन अपनी औलादों की, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं फिर यहां पर, ये बात समझ में आई, कुछ जो चीजें पीछे गई हैं कि बड़ा बच्चा हाथ से निकलता है तो उसकी तो फिक्र हो भी जाती है कुछ कल्चरली रिचुअलिस्टिक मुस्लिम पेरेंट्स को, लेकिन अगला बच्चा जो है वो उसी लाइन पे चला रहे होते हैं तालीम के जेवर के नाम के ऊपर, या जो है वो पलानी अच्छी ट्रेड अच्छी तालीम और तरबियत के नाम के ऊपर सो कॉल्ड, और उसका उसकी फिक्र नहीं होती कि जब ये पर पुर्जे निकालेगा तो इसने भी तो उसी रास्ते पे चलना है ना जिस रास्ते पे इसकी बड़ी बहन या इसका बड़ा भाई चला है, ये बात समझ में नहीं आती, आ गई यार समझ में इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई, और इतनी समझ में आ गई ना कि अगले बंदे को भी समझा सकें कि नहीं समझ में आई, अगले बंदे को समझाने के लेवल की समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तो अब ये जो माहौल है, कहते हैं कि इन तीनों आयतों का हासिल मुसलमान को बुरे माहौल और बुरी सोहबत से बचाना है, ठीक है, बुरे माहौल और बुरी सोहबत से बचाना है, क्योंकि हमारा दीन असल में क्या है, दफ़े मुज़र्रत, जो अल्लाह ताला ने जरर पहुंचाने वाली चीजें दुनिया में बना दी हैं उनसे बचाना, ये हमारे दीन की सबसे पहली चीज है। इसी को तकवा कहते हैं, इसी को तकवा कहते हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाना। ठीक है, तो तीनों आयतों का हासिल भी क्या है कि मुसलमान को बुरे माहौल और बुरी सोहबत से बचाना है, जो इंसान के लिए सम्य कातिल है, जहर कातिल। कुरान और हदीस की बेशुमार नुसूस के अलावा मुशाहिदा और तजुर्बा भी इस बात का गवाह है कि इंसान को तमाम बुराइयों और जराइम में मुब्तला करने वाली चीज उसकी बुरी सोसाइटी और बुरा माहौल है। देखें, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे जाइएगा ना, तो जरा सोचिएगा इस बात को कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है इन्होंने बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स बनाई हुई होती, पहले जहां नहीं भी होती थी अब वहां भी बन गई सारी की सारी ये ड्यूटी फ्री शॉप्स। ठीक है, तो कल हमारे एक साथी कहने लगे कि ये ड्यूटी फ्री शॉप से इतना इन्होंने चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो है वो मतलब इतनी अपना प्रोडक्ट्स रखी हुई है, खरीदता तो कोई है नहीं यहाँ पर, है ना। आपने देखा कभी ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर जो है वो रश लगा हुआ हो, जिस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रश लगा होता है, एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप पे रश लगा होता है, एक आध बंदा कोई ज्यादा से ज्यादा खरीद रहा होता है। और आपका क्या ख्याल है, वो जो शॉप्स होती होंगी वो क्या सस्ती शॉप्स होती होंगी, क्या उसका किराया जो है वो बहुत कम होता होगा। दिन भर में कोई बिक्री ना हो तो फिर वो इतना किराया दे करके अपनी ड्यूटी फ्री शॉप्स को जो है वो वहां पर क्यों बनाते हैं, हालांकि खरीदने वाला कोई होता नहीं, क्यों बनाते हैं आप बताइए, ये आप बताएंगे इसका जवाब, जबकि कोई खरीदारी बिक्री तो वहां होती नहीं है। इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतनी जो है वो प्रोडक्ट्स की वहां पे डिस्प्ले क्यों, इसके आप दोनों जवाब दे सकते हैं, सेक्युलर जवाब भी दे सकते हैं और जो है वो स्पिरिचुअल जवाब भी दे सकते हैं, सेक्युलर सेक्युलर जवाब भी दे सकते हैं और स्पिरिचुअल जवाब भी दे सकते हैं। सेक्युलर जवाब इन्होंने कहा, गलत लिखा है आपने, सही से लिखे हैं, तशहीर की खातिर, ठीक है, एडवर्टिजमेंट किसको कहते हैं, एडवर्टिजमेंट की खातिर, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए, ब्रांड देखकर कहीं और से परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। अच्छा, वहीं पे एडवर्टाइजमेंट इतनी क्यों करते हैं, वहीं पे इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर क्यों करते हैं, मार्केटिंग होगी, देखते रहेंगे तो कभी तो खरीदेंगे। बिल्कुल सही माशाल्लाह, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं ना, ठीक है, उनके पास फारिग टाइम होता है, वो फारिग होते हैं, उनके पास कोई भाई पता है कि मेरी फ्लाइट किस टाइम पर है, फ्लाइट का जो है वो गेट कौन सा है, ठीक है, और मैंने वहां पे हमारी तरह के लेट पहुंचने वाले, हमने तो कल अपनी फ्लाइट ही मिस कर दी परसों, ठीक है, हमारी तरह के हम क्लास करके जब गए थे तो फिर रास्ते में भी अजीब अजीब अल्लाह ताला की तरफ से मामला, तो एक फ्लाइट ही मिस हो गई, लेकिन बाकी लोग तो टाइम पे पहुंचते हैं ना, और टाइम पे पहुंचते हैं तो अब दे आर ऑल दे बिल्कुल खाली और जहन होते हैं वहां पर, ठीक है ना, इधर उधर घूम रहे होते हैं, अपना गेट जो है वो उसका भी वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, गेट अनाउंस भी नहीं करते पहले से, ठीक है भाई, आपको अनाउंस करना है तो आप पहले से अनाउंस कर देना, नहीं आखिर वक्त में अनाउंस करेंगे। अच्छा, गेट के अनाउंसमेंट के जो स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं वो कहाँ लगी हुई होती हैं, सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स के इलाके में लगी हुई होती हैं, कहाँ लगी हुई होती हैं स्क्रीन्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स वाले इलाके के अंदर लगी हुई होती है, गेट्स की तरफ ये सारी शॉप्स नहीं होती, वहां तो सिर्फ खाने पीने के चंद छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, जहां पे एक्चुअल गेट्स होते हैं वहां पे तो शॉप अक्सर होती भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जहन खाली होता है, कोई और परेशानी नहीं होती, बस जो है वो फ्लाइट लेनी है, तो इस वजह से ये सारे डिस्प्ले जो है ना ये इनके दिलों में उतर जाएंगे, ये इनके जहनों में सब्त हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर जो शॉप्स होती हैं वो शॉप्स जो है वो किस चीज की शॉप्स होती हैं, अगला सवाल, पैसे वाले लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं भाई, वो तो अब सारी माशाल्लाह उम्मत के पास तो अब खूब माल है, गरीबों के लगता है पता नहीं, बहरहाल ठीक है, पैसे वाले लोग ज्यादातर शॉप्स वहां पे किस चीज की होती हैं, ठीक है, परफ्यूम्स, मेकअप, लग्जरी आइटम्स, ठीक है, सिगरेट्स, चॉकलेट्स, लग्जरी ब्रांड्स होती हैं वहां पर, ठीक है, और वहां पर जो अब जो है अब हर जगह ही, पहले तो अमेरिका यूरोप में होती थी, टर्की में होती थी, शराब की भी दुकानें होती थी, अब जो है ना वो उसके सिर्फ दुकानें खाली नहीं होती कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होती, अब वहां पर बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन्स भी लगी हुई होती है, उनके ऊपर वीडियोज भी चल रही होती है, ठीक है ना। उन वीडियोज के अंदर फिर क्या चीज दी जा रही होती है, खाली प्रोडक्ट की शक्ल नहीं दिखाई जा रही होती, खाली प्रोडक्ट की शक्ल नहीं दिखाई जा रही होती, बल्कि प्रोडक्ट को जो है वो जिंदगी का हिस्सा बना करके दिखाया जा रहा होता, जिंदगी का हिस्सा बना करके, यानी कोई मॉडल होती है या होता है और उस मॉडल की जिंदगी में उस प्रोडक्ट की वजह से कितनी खुशियां आई होती हैं, राइट। वो छोटी सी वीडियो के ऊपर वो सारी खुशियां दिखाने की वो कोशिश कर रहे हो, वो सारी अच्छी जिंदगी जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना वो एक माशाल्लाह मौलवी साहब की बेटी, मौलवियों के पास भी माशाल्लाह अब एयरलाइन ट्रैवल के पैसे तो आ जाते हैं ना, ठीक है। तो मौलवी साहब की पर्दे वाली बेटी जब वो इन चीजों को देखती है तो अच्छी जिंदगी उसको किधर नजर आएगी, खुशगवार जिंदगी, खुशियों भरी जिंदगी, अच्छी जिंदगी उसको कहाँ नजर आएगी, उन्हीं स्क्रीनों के ऊपर नजर आएगी ना, उन्हीं तस्वीरों में उसको नजर आएगी ना, उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर उसको नजर आएगी ना। और इस तरफ जो दीन है, दीन क्या, दीन तो है नाउज बिल्ला एक इंतहाई डरावनी किस्म की चीज, एक खौफनाक किस्म की चीज, ठीक है। तो ये जो खौफनाक चीज है फिर उसकी तबीयत खौफनाक चीज की तरफ माइल होगी कि उसकी तबीयत जो है वो खुशगवार चीज की तरफ माइल होगी, ठीक है। तो हम समझ रहे होते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। और जी बहुत ही जबरदस्त, हमने तो बड़ी जबरदस्त, हमने क्या किया, हमने फाउंडेशन पे कोई काम ही नहीं किया होता, हमने फाउंडेशन पे कोई काम ही नहीं किया होता, रट्टू तोते के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया हुआ होता है, रटवा दिया होता है चंद चीजों को, या चंद चीजें जो है ना वो अमाल की सिखला दी होती हैं, हमने दिलो दिमाग के ऊपर कोई मेहनत नहीं करी होती। जबकि कुफर जो है वो अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए दिलो दिमाग के ऊपर मेहनत कर रहा होता है, तो असर किस तरफ निकलेगा फिर, ठीक है। तो हम कितना रोना रोएंगे दूसरों का, अपना क्यों नहीं रोना रोते कि हमने क्या किया, हमने क्या दीन को समझा है, हमने क्या हकीकत को समझा है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं रोते हैं। दूसरों का ये इल्जाम ठहराते रहने से कोई फायदा नहीं है कि वो उन्होंने ये कर दिया और एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हम एजुकेशन सिस्टम की बुराइयां तो यहाँ पे इसलिए बता रहे होते हैं ताकि हम उसके शहर से बाहर निकलें। ये मेरा करने का काम है, ये टीचर के करने का काम है, आपके करने का काम खाली ये नहीं है कि आप जो है वो इल्जाम दूसरों को देते रहें और अपने काम से फारिग बैठे रहें, ये आपके करने का काम नहीं है, बल्कि दूसरों को तो आपने भी ये बात समझानी है जो कि हमने आपको समझाई, ताकि आप ये आगे भी लोगों को समझाएं। लेकिन खुद क्या करना है, खुद तो फिर मेहनत करनी है ना फाउंडेशंस के ऊपर, ठीक है। तो हजरत ने यहाँ पे क्या फरमाया कि जराइम में मुब्तला करने वाली चीज, अच्छा जराइम से बात शुरू हुई, देख लें इनकी बुराइयां इतनी खुल के हमारे सामने आई हुई हैं, काश कि हम इनकी बुराइयों को जान लें, कि जिस एजुकेशन सिस्टम को जो है वो हम लाजिम समझ के बैठे हुए हैं, इनकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो क्या क्या जुर्म और क्या क्या कत्लो गारत गरी हो रही है, इनके स्कूलों के अंदर, इनके जो है वो फैमिलीज के अंदर, ठीक है। काबिले नफरत और काबिले दहशत चीजें, ये दीन में नहीं है, दीन को तो हमने समझा नहीं है, इस वजह से दीन जो है वो दहशत का एक नमूना में नजर आता है। लेकिन इनके जो मुआशरे के अंदर जो इनके तालीमी निजाम और इनके डिवाइसेस और इनके जो नजरिया कामयाबी है, इसकी वजह से जो खुल करके दहशत गर्दी सामने आई हुई है, वो खुल करके हमारे सामने है, लेकिन वी डोंट इवन वॉन्ट टू लुक, हम देखना ही नहीं चाहते उसकी, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा उन चीजों को मेहनत करने की जरूरत है ना, भाई क्या इनके स्कूलों के अंदर हो रहा है, क्या इनके जो है वो घरानों के अंदर हो रहा है, ताकि डर भी सकें और डरा भी सकें। तो जराइम में मुबतला करने वाली चीज उसकी बुरी सोसाइटी और बुरा माहौल है, जिसमें फंसने के बाद इंसान अव्वल तो खिलाफ जमीर और खिलाफ तबा बुराइयों में मुबतला हो जाता है, जमीर मर जाता है इंसान का उसके खिलाफ, और वो जाकर के काम करता है और तबीयत के खिलाफ बिल्कुल जाकर के वो बुराइयों में मुबतला हो जाता है, और फिर जब आदत पड़ जाती है तो ये बुराई का एहसास भी खत्म हो जाता है। बल्कि बुराई को भलाई और भलाई को बुराई समझना शुरू हो जाता है। जैसे कि आमतौर पर इस वक्त हम सबका यही मामला है, हमारी डेफिनेशन जो है वो बदल गई है, तो ये बुराई का एहसास भी खत्म हो जाता है। जैसे कि एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स अव्वल गुनाह में मुबतला होता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और जैसे सफेद कपड़े में एक स्याह नुक्ता हर शख्स को नागवार होता है, उसको भी गुनाह से दिल में नागवारी पैदा होती है। लेकिन जब एक के बाद दूसरा और तीसरा गुनाह करता चला जाता है और पिछले गुनाह से तौबा नहीं करता, तो यह के बाद दीगरे स्याह नुक्ते लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि दिल की नूरानी लौह बिल्कुल स्याह हो जाती है। ठीक है, कासियत कुलूबुहुम, ठीक है, ये हमने सूरह माईदा की तफसीर के अंदर भी ये सारी बातें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सारी हुज्जत तमाम की हुई है, हर जगह इन बातों को अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि ये दिल की लौह जो है ना ये बिल्कुल स्याह हो जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि उसको भले बुरे की तमीज नहीं रहती। कुरान मजीद में इसी को लफ्ज राना से ताबीर फरमाया है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून, यानी उनके दिलों में उनके आमाल बद की वजह से जंग लग गया कि अब सलाहियत ही मफकूद हो गई। हमारा अमल बद क्या है कि हम दीन की बुनियाद को नहीं समझ रहे हैं। ये हमारा अमाल बद है। रोजे रख लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं, लेकिन दीन का मकसद क्या है, दीन की बुनियाद क्या है, फाउंडेशन क्या है, ईमान क्या है, हम उसको नहीं तवज्जो दे रहे हैं। ये हमारा अमाल बद है। हम खुश होना बंद करें अपने नमाजों और रोजों से, रोजे रखना बंद ना करें, ये नहीं कह रहा रोजे रखना बंद कर दें और जो है वो अब जो है फाउंडेशन समझने के अंदर मेहनत शुरू कर दें, ये नहीं कह रहा, लेकिन दीन की हकीकत को समझने पे मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपकी औलाद कुफर ले जाएगी, आपके रोजे जो है वो आपकी औलाद को नहीं बचा सकेंगे। कितने ही फजाइल पढ़ लो इन रोजों के, कितने ही फजाइल पढ़ लो इन रोजों के और पढ़ा दो, हमारी औलाद नहीं बचेगी, समझे? ठीक है, तो भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑनेस्टली स्पीक, मुझे आपके किसी जात पे, किसी जात ही मसला नहीं है किसी के साथ मुझे, लेकिन मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है इस दीन को हमने, नहीं? अजीब अजीब और गरीब किस्म का जो है ना वो तोड़ मरोड़ करके अपने दीन बनाया हुआ है, और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हुए लोगों से, और जहां फाउंडेशंस की बात आती है वहां बिल्कुल अंधे और गूंगे और बहरे बन जाते हैं बिल्कुल सारे के सारे। ठीक है, तो जहां पर गौर किया जाए, इंसान को इस हालत पर पहुंचाने वाली चीज अक्सर उसका गलत माहौल और बुरी सोहबत होती है। ठीक है, अक्सर गलत माहौल और बुरी सोहबत होती है का मतलब क्या कि एक्सेप्शन होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं, एक्सेप्शन क्या होती हैं कि माहौल तो बड़ा अच्छा है, सोहबत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना वो दिल के अंदर जो है वो तकब्बुर और जिद ऐसी है कि अच्छे माहौल के बावजूद उससे फायदा नहीं होता, बेहतरीन माहौल है लेकिन जिद की वजह से जो है वो उससे फायदा नहीं उठा रहा। जैसे मुनाफिकीन मदीना, उनसे ज्यादा अच्छा माहौल किसी को मिला था? मस्जिद नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी, सहाबा कराम, राइट, पूरा का पूरा फरिश्तों वाला माहौल, कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं उन मजालिस के ऊपर, रहमतें नाजिल हो रही हैं, लेकिन क्या उन मुनाफिकीन मदीना, ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथ ही जितने थे, क्या उनको कोई फायदा हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी सबको हो रहा था, जो सहाबे कराम थे ईमान वाले थे उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, तो वो रूल था, अच्छे माहौल से फायदा हो रहा था। एक्सेप्शन ये कमबख्त, ये बदबख्त लोग थे जो कि अपने तकब्बुर और अनानियत की वजह से उस माहौल के बावजूद इससे महरूम थे। ठीक है, तो ये उसूल तो उस एक्सेप्शन भी कोई ऐसी नहीं, रैंडम एक्सेप्शन नहीं होती कोई, एक्सेप्शन और ऑलवेज एयर का मतलब ये नहीं है कि रैंडमली और विदाउट एनी रीजन जो है वो कोई एक्सेप्शन बन जाए, नहीं, रीजन की वजह से ही कोई एक्सेप्शन बनता है। ठीक है, उसी तरीके से बुरे माहौल में कोई अच्छा नेक बन जाए तो वो भी एक्सेप्शन होती है, वो उसके दिल की ऐसी कैफियत होती है, ऐसे जो होती है वो सुपुर्दगी होती है उसके दिल के अंदर, ऐसी जो होती है वो लिल्लाहियत होती है कि बुरा माहौल उसको असर नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन वो तो एक्सेप्शन होती है ना, वहां पे इसको इस तरह से देखा जाएगा कि हम अपने बच्चे को एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर के उसूल की बुनियाद पर, तो हम अपने बच्चे को जो है वो गंदे माहौल के अंदर धक्का नहीं दे दे सकते हैं ना, तो नाउज बिल्ला बिल्ला ही मिल। बुरे माहौल और बुरी सोहबत से अल्लाह ताला की हम पनाह मांगते हैं। इसीलिए बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है। हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुफ्ती हैं और इनको पता है कि लफ्ज फर्ज जो है वो हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम लोग तो उर्दू जुबान में थ्रो अराउंड करते रहते हैं ना टर्मिनोलॉजीज को, किसी बात को फर्ज कह दिया हमने उर्दू जुबान के अंदर, हमें हम भी बहुत अहम चीज को हम फर्ज कह देते हैं, ठीक है ना, कोई अहम चीज समझते हैं हम उसको कह देते हैं ये फर्ज है, लेकिन ये उर्दू मुहावरे में हम बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि फर्ज का मतलब क्या है। फर्ज जो है ना वो आप हर चीज को नहीं कह सकते, लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह को तो ये बात पता है ना, ठीक है ना। ऐसे पक्के मुफ्ती यानी बिल्कुल बाय द बुक, बिल्कुल शरीयत के उसूल के खिलाफ इधर ना उधर, उन्होंने अगर लफ्ज फर्ज इस्तेमाल किया है तो हमारी तरह इस्तेमाल नहीं किया, सोच समझ करके उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो फर्ज किस चीज को कहते हैं भाई, अब जरा हम बात निकल ही आई है तो फर्ज किस चीज को कहते हैं ये भी बता रहे हैं जल्दी से, कौन सी चीज फर्ज होती है, किस चीज को फर्ज कहते हैं। ऐसा जवाब चाहिए जो कि आसानी से मकसद जो है वो पूरा हो जाए, किस चीज को फर्ज कहते हैं, इस कॉन्टेक्स के हिसाब से जवाब चाहिए। ऑब्लिगेशन जी, ना करें तो सजा मिलेगी, जिसको ना करने से पिटाई होती है उसको फर्ज कहते हैं। यह है फर्ज की तारीफ, जो कि यहां पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ये तारीफ है इसकी। ऑब्लिगेशन लव ट्रांसलेशन करने से कोई हम तसरस को थोड़ी यहां पे आपसे पूछ रहे थे कि तसरस में इसके लिए कौन सा दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिससे पिटाई होती है अगर आप वो ना करें, सजा मिलती है अगर आप वो ना करें, तो बच्चे के मुरब्बियों को सजा मिलेगी अगर उन्होंने इसका एहतमाम ना किया कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाइटी से बचाने में पूरी कोशिश, अगर उन्होंने पूरी कोशिश नहीं करी उनको सजा मिलेगी। यह है इस जुमले का मतलब, यह है इस जुमले का मतलब। तो सजा के लिए तैयार है, गो राइट अहेड, गो राइट अहेड, माँ आपकी मर्जी है भाई, अगर आप सजा के लिए तैयार हैं, और सजा मेरी देने वाली, मैं क्या कर लूंगा आपका, मैं तो किसी को भी सजा नहीं दे सकता, मेरे पास है ही क्या, अल्लाह की बात हो रही है, कोई और सजा नहीं देगा, अल्लाह सजा देता है, ठीक है। अगली तीन आयतों में भी शिर्क अब्दाल और तौहीद और आखिरत के इस्बात का मजमून है जो तर्जुमे से जाहिर है। ये आगे तो फिर हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अभी आज की क्लास तो खत्म होने वाली है, एक बात को फिर हम आखिर में इसकी तमहीद, मतलब एक बात की समझ लें इसको, कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहने, कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहने के, देखें क्या हुआ कि माहौल और सोसाइटी से बचाना ये फर्ज है ना, नहीं बचाएंगे तो सजा मिलेगी, तो अब करना क्या है फिर, माहौल बनाना है, ऐसी सोसाइटी बनानी है, ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि पूरी दुनिया को तब्दील करना है, जब तक पूरी दुनिया तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक हमारी सोसाइटी नहीं बन सकती, उस वक्त तक हमारा माहौल नहीं बन सकता। भाई छोटे से शुरू करना है ना, अपने घर से शुरू करना है, अपने जानने वालों से, अपने घर वालों से, अपने खानदान वालों से, या अपने मिलने जुलने वालों से, या जो आपकी बात सुनता है उससे शुरू करें, जो नहीं सुनता, जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी परसों, जो नहीं सुनता, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, उसके लिए दुआ करें, लेकिन जो सुन रहा है उसके साथ तो मेहनत करें ना, उसके साथ तो काम करें ना, मिलजुल करके जो है वो माहौल बनाए ना। इसकी मिसाल, चंद साल पहले हम पाकिस्तान गए थे तो अल्लाह ने हमें उस ट्रिप में मौका दिया था, अभी बहरिया टाउन कराची में जाकर के हम रिश्तेदारों से मिल के आए, और हमारे एक रिश्तेदार, हमारे अपने भाई जो हैं वो लाखानी, क्या नाम था उसका, अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो वहां पे भी हमारा जाना हुआ। अब कराची में हमने हमने फिर उसके बाद एक बयान भी छोटा सा मिल गया करने को, तो हमने बयान में लोगों को समझाया कि भाई देखें यही है असल में ना, पाकिस्तान की जो हम हर वक्त सारे पाकिस्तानी फिक्र में लगे रहते हैं ना, पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान को सुधारना है, मैंने कहते हैं पाकिस्तान को सुधारने का कितना अच्छा तरीका है ये, ठीक है, कि भाई लाखानी स्टेट्स के अंदर जो है वो उन्होंने अपने सारे सिस्टम्स को सही किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया हुआ है, बहरिया टाउन इतना बड़ा बहरिया टाउन, हालांकि कराची के मुकाबले में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, वहां पे सारी रोड्स बनी हुई हैं, वहां पे सारे बिल्स बिल्स का मसला भी नहीं है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का मामला भी कोई मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये पॉकेट्स बनानी होती हैं, पॉकेट्स। इस दफा जो है वो हम नया नाजमाबाद चले गए, तो नया नाजमाबाद भी उसी टूटे फूटे यानी गढ़ों से भरे हुए कराची के अंदर एक नया नाजमाबाद बना दिया भाई, राइट। वहां पे ये वाले मसले, अक्सर मसले नहीं है इस तरह के, थोड़े बहुत तो असर रहते ही है बाहर का, लेकिन अक्सर मसले नहीं है। तो पॉकेट्स बनाते हैं ना, ये है माहौल बनाना, ये दुनियावी एतबार से एक मिसाल है ये माहौल बनाने की, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना अपना माहौल बना, चाहे वो चंद लोगों के साथ मिलकर के माहौल बनाना हो, चाहे उससे ज्यादा हो, चाहे उससे ज्यादा हो, तो एक बात तो हो गई माहौल बनाने की मेहनत, और माहौल बनाने की मेहनत के लिए दावत और तबलीग की मेहनत, उसको समझेंगे सीखेंगे तब आगे बात करेंगे, तब जो है वो अगला बंदा आपके साथ एग्री करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो आपका एक मिलना जुलना बनेगा। और फिर इस तरीके से मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर अकेले चलते हैं, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये कारवां ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि माहौल बनाने की मेहनत करनी है हर इंसान को अपने लेवल के ऊपर करनी, और दूसरी बात ये कि अगर कोई बना बनाया हुआ माहौल है जिसमें कि अल्लाह ने आपको जुड़ने की तौफीक दी है, तो अब उस माहौल की हिफाजत की मेहनत करनी, उस माहौल की हिफाजत की मेहनत करनी, ठीक है। तो कोई ऐसा काम हम खुद ना करें या किसी और को करता हुआ देखें तो उसको जो है वो रोकने की मेहनत करें कि जिससे कि ये माहौल टूटने का खदशा हो, खराब हो जाने का, बिखर जाने का खदशा हो, उसको रोकें, उसको समझाएं, या माहौल के जो बड़े हैं उनको बताएं कि भाई ये कुछ बेवकूफ लोग हैं, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि माहौल को नुकसान पहुंचाने का खदशा, पहुंचने का खदशा है। अगर ये माहौल टूट गया तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा माहौल कहां से आएगा, फिर कैसे हम उनको जो है वो बुरे माहौल से बचाएंगे और अच्छे माहौल के अंदर दाखिल करेंगे। तो हिफाजत की मेहनत करनी, ठीक है। अक्सर शैतान, क्योंकि शैतान को तो पता है ना कि अच्छा माहौल मिल गया तो अक्सरियत जो है वो फिर उसके लिए नेक बनना आसान हो जाएगा। एक्सेप्शन तो हम रहेंगे, एक आध को तो वो शैतान फिर भी निकाल लेगा, अपने रास्ते के ऊपर चला लेगा, लेकिन अक्सर को वो नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इस वजह से उसकी खूब मेहनत होती है कि ये माहौल बनने नहीं पाए, और अगर बन जाए तो बस किसी तरीके से ये जल्द से जल्द टूट के खत्म हो जाए। तो वो लगा रहता है इस मेहनत के ऊपर, और इसके लिए फिर वो लोगों को बेवकूफ भी बनाता है कि देखो इस माहौल के अंदर तो देखो ये खराबियां भी हैं, ठीक है, अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं, लेकिन देखो ये खराबी भी है, और ये इसके अंदर प्रॉब्लम भी है, और ये जो है ना वो इसके अंदर ये चीज ठीक नहीं हो रही है। अब ये जो ये कहते हैं ना, ये ठीक नहीं हो रहा, ये खराबी भी है, ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो इसके साथ वो इसके जरिए से वो क्या करता है कि जो भोले भाले किस्म के नेक लोग होते हैं ना, भोले भाले नेक लोग या कम अकल, तो उनको जो है ना फिर वो बगावत के ऊपर उकसाता है, बगावत के ऊपर, इस्लाह पर नहीं बल्कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून वाले इस्लाह के ऊपर, वो जो मुनाफिकों वाली इस्लाह होती है जिसको बगावत कहते हैं असल में, ठीक है। तो बगावत के जरिए से वो चाहता है कि वो किसी तरीके से ये माहौल, क्योंकि बगावत अगर हो जाएगी तो फिर माहौल टूट जाएगा, लेकिन उसके लिए बहाना क्या बनाते हैं, देखो ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, ये गुनाह हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। भाई उसका तरीका ये था कि अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही तो आप हेल्प करें उसको ठीक करने के लिए, आप अपनी खदमात पेश करें, आप कोई अच्छे अंदाज से जो है वो नसीहत कर लें, राइट, या कोई कमी बेशी है तो आप कोई कंट्रीब्यूशन कर दें अपनी सलाहियतों की, आप अपने अपने वक्त की, अपने नॉलेज की, ताकि वो अगर कोई कमी बेशी है वो ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं भी हो रही तो भाई ठीक है ना, परफेक्शन तो जन्नत में जाके मिलेगी ना यार, दुनिया में तो परफेक्शन नहीं मिलने वाली है ना, तो हमें तो फिर टॉलरेंस भी तो पैदा करनी है ना, क्योंकि ओवरऑल तो माशाल्लाह नेकी की मेहनत हो रही है ना, ओवरऑल तो लोगों को फायदा हो रहा है ना, तो अब जो चीजें अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो भाई टॉलरेंस भी तो एक चीज होती है ना, कुछ बर्दाश्त भी तो एक होता है ना, सब्र भी तो एक होता है ना एक चीज। लेकिन शैतान नहीं, कहता नहीं ठीक करो, अब ठीक करने के लिए बगावत करो, खराब करो, खत्म करो इस माहौल को, ठीक है। तो ये उसको एक तो माहौल बनाने की मेहनत करनी है, और अगर माहौल बना बनाया मिल गया है, अल्लाह ताला ने प्लेट में रख के पेश कर दिया है, तो अब उसकी हिफाजत की भी मेहनत करनी, ठीक है। अब एक आखिरी बात करके आज खत्म करेगा, लेकिन किसी ने लंबा सा मैसेज लिखा हुआ है तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि हमारे घर खानदान मोहल्ले में यही माहौल है गुनाहों का, और नमाज रोजा इन सब को ही इबादत समझते हैं, और बाकी सब साथ साथ चले दीन दुनिया साथ साथ, एजुकेशन सिस्टम अलग चल रहा है और मदरसा अलग, हम सब छोटे हैं, सुनने वाले तो सब ही, मानने वाले कोई नहीं। तो सब सभी, हाँ तो सभी सुनने वाले, यानी हम सुनने वाले हैं तो मानने वाला कोई नहीं है। हम खुद अमल में लेट हैं तो पहले तो बहुत ताने सुनने, बिल्कुल ही घर वालों ने अलग कर दिया नफरत की नजर से देखते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए पर्दा करते, अब एक्सेप्ट कर लिया खानदान वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप कोशिश में लगी रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस्तेकामत अता फरमाई, आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारी, यकीनन आप इल्म भी हासिल करती रही होंगी किसी ना किसी जरिए से, और चलते रहे तो अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी ना, पर्दा करने को आपके एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे ही होता है। ठीक है, देखें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो हमारे सामने है ना, नबी अलैहिस्सलाम को फूल के हार तो नहीं पहनाए गए थे ना। ठीक है, और सबसे ज्यादा मुखालफत अपनों ने करी थी। ठीक है, तो जब भी कोई सही रास्ते पे चलता है, यानी इल्म के साथ, यानी कि जिद और अपनी खामखा की जो है वो जज्बातियत को सही रास्ता समझ करके चलना शुरू हो गया उसके ऊपर, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बड़ों की रहनुमाई में, जो इल्म वाले हैं तजुर्बे वाले हैं उनकी रहनुमाई में, जो भी नेकी के रास्ते पे कदम बढ़ाता है उसको मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से दीन का काम शुरू नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निगरानी में नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का काम शुरू किया था। नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अपनों ने सबसे ज्यादा अजियतें और मुखालफतें पहुंचाई। ठीक है, तो हम ये चीज सेट कर लें कि हम अपनी तरफ तौर पर तो नहीं शुरू हो गए नेकी करना, बड़ों की कोई रहनुमाई है, कोई हमारे सामने कोई अच्छी मिसाल है कि नहीं, अगर है तो फिर याद रखें मुखालफतें तो होंगी, लेकिन अल्लाह ताला फिर मदद भी फरमाते हैं और आखिर में बिलाखिर उसको कबूल कर भी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा और सी लिखी, बच्चों की बुनियाद कैसे बनाएं, आपकी कोई रिकॉर्डेड सेशन हो तो प्लीज शेयर करें। बच्चों की बुनियाद बनाने के ऊपर हमारे हजरत की बाकायदा फॉर्मल चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर के हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं और सारी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद। ठीक है, तो वरना तो दरस कुरान के अंदर तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें डिस्कस होती रहती हैं, तो दरस कुरान का हिस्सा बने, ठीक है, इसका पक्का हिस्सा बन करके रहें, और फिर जो बाकायदा टॉपिक वाइज टॉपिकल दुरूस होते हैं ना, जैसे मिसाली माँ का दर्स है, मिसाली बाप का दर्स है, उमूर खानदारी का दर्स है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का दर्स है, ये टॉपिकल दुरूस जो है यानी टॉपिक बेस्ड जो है, ये हमारे हजरत ने इनके ऊपर बेहतरीन काम किया, लेकिन वो भी मुख्तसर मुख्तसर अल्फाज में हजरत ने 1-1 घंटे के बयान किए, तो अल्लाह ताला ने फिर इस फकीर को तौफीक दी कि वो 1-1 घंटे के बयान के ऊपर फिर बहुत लंबी जो है वो लोगों के सिचुएशन के हिसाब से फिर दुरूस होते हैं, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स वो टॉपिकल रिकॉर्डिंग्स आप उसमें कह सकते हैं, टॉपिक बेस्ड वो सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप जाके देखें इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन ग्रुप का हिस्सा बने तो फिर आपको फिर छोटी छोटी सेशन, छोटे छोटे आपको क्लिप्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। ठीक है, ज्वाइन करें, अगर दूर बैठे रहेंगे ना और खुद से नेक बनने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो शैतान आपको गिराता रहे, शैतान आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आखिरी बात करके जो आज खत्म करना चाह रहा था कि ये जो माहौल का होना है ना, ठीक है, ये इसमें परफेक्शन तो नहीं होती है, लेकिन दूसरे ऑल्टरनेटिव माहौल जो है वो उनके मुकाबले में बेहतरी होती है। ठीक है, तो अब ये बेहतरी जो है ना, ये भी इल्म वालों को ही नजर आती है कि देखो बाहर के माहौल में और यहाँ के माहौल में क्या फर्क है। ठीक है, ज्यादा अच्छे अंदाज में जो इल्म वाले होते हैं उन्हीं को ये बात समझ में आती है, और जो कम इल्म होते हैं या बेइल्म होते हैं ना, उनको इवन ये कोई खास फर्क भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह ये है कि आपने ये बात शायद सुनी हो, आपका वास्ता पड़ा हो ऐसे बातों से कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दिया है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, ये मुसलमानों को मुल्क दिया है अल्लाह ताला, पाकिस्तानियों को ये मुल्क नहीं दिया, इस वजह से जो नॉन पाकिस्तानीज हैं वो ये फिक्र ना करें, परेशानी में मुब्तला ना हो जाए, यहाँ पर जो है ना वो दूसरों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही, हमें तो दिया ही नहीं, जो अकाबरीन उम्मत हैं, जो बड़े हैं ना इल्म वाले और बसीरत वाले, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर फिर अपनी मोहर भी सख्त करी कि ये जो मुल्क अल्लाह ताला ने दिया ना, ये दुनिया के मुसलमानों को दिया, ये सिर्फ इस खत्ते में रहने वाले पाकिस्तानियों को नहीं दिया जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या पाकिस्तानी आईडी कार्ड, ठीक है। तो अब जो ये जो चीज दी है ना अल्लाह ताला ने, जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है, तो जो बड़े हैं उनको फर्क नजर आता है कि इसके अंदर में और इसके बाहर में कितना फर्क है। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी जो है ना वो इसके ऊपर हमें समझाते रहे, ठीक है। और दूसरे भी बड़े, हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं है, नहीं थे वो, राइट, वो हमेशा समझाते रहे कि ये जो मुल्क है ना, ये इसका खत्म हो जाना ये एक ऐसा बड़ा यानी हादसा होगा कि जिसकी उम्मत जो है वो मुतहमल नहीं हो सकती। क्यों? हालांकि पाकिस्तान में हम तो सबसे ज्यादा जो है वो बुराइयां करने वाले हैं, हम तो सबसे ज्यादा जो है उसके ऊपर मुमलकत खुदादाद की जो है वो ताने भी देते हैं, ये देखो ये मुमलकत खुदादाद है, ये है जो है वो इस्लामी जमहूरिया है, ये होता है उसके अंदर, ये होता है उसके, वो होता है, लेकिन हरगिज हरगिज इस साजिश का ये मतलब नहीं होता कि हम खुद या किसी और को जो है वो बगावत के ऊपर उकसाना चाह रहे हैं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि इसकी कदर करने के ऊपर उकसाना चाह रहे हैं, इसकी कदर करने के ऊपर कि भाई जिसके नाम के ऊपर तुमने ये मुल्क लिया है, हमने ये मुल्क लिया है, और जिस मकसद से ये लिया है, वरना तो कोई मकसद ही नहीं है इसका, इस्लाम ही तो इसका मकसद है, दीन ही तो इसका मकसद है, मुसलमानों के लिए दिया गया है, तो भाई दीन के ऊपर खुद अमल करना है, सिर्फ हुक्मरानों को लान तान करते रहना और उनको सारा इल्जाम देते रहना नहीं, अवाम खुद देखो अपने आप को, तुम कितना दीन चाहते हो, तुम कहां जो है वो दीन के ऊपर राजी हो, तुम कहां जो है वो फराइज की तुम्हें फिक्र है या अकायद की फिक्र है या जो है वो दीन की तुम्हें फिक्र है, हर वक्त जो है ना वो अपना कोई नया दीन बना करके कोई नई जो है वो चीज लाने की मार्केट के अंदर कोशिश करते रहते हो। ये चीज हमने खत्म करनी है, हमने इससे तौबा करनी है। तो हम ये सारी बातें जो करते हैं, अगर पाकिस्तान के बजाहिर कोई खिलाफ भी बात नजर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलाह की नीयत से, खैरख्वाही की नीयत से, ताकि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर एक अच्छे मुसलमान बन सकें, और फिर अल्लाह ताला जो है हमें अच्छा निज़ाम भी अता फरमा देगा, अल्लाह ताला अता फरमाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे अकाबरीन जो हैं, भी आज तो असागरीन में भी नहीं आता, लेकिन हमारे अकाबरीन जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उजागर करते रहे, वो इसी वजह से कि हमारी औलादों के लिए, हमारी औलादों के आगे आने वाली नस्लों के लिए, उनके ईमान के लिए, ये जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, इसकी जो है वो इसकी मौजूदगी, अब इसके अंदर आप इस्लाह की मेहनत करते रहे, खैरख्वाही के साथ लगे रहे, और इससे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी मेहनतें बाकी दुनिया के अंदर फैलती है उसका भी जो है वो अक्सर लोग इनकार नहीं कर सकते, कुछ लोग करेंगे इनकार लेकिन अक्सर लोग उसका इनकार नहीं कर सकते, जो मदारिस की मेहनत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलती है, जो जो तबलीगी जमात की मेहनत फैलती है, राइट, मलेशिया इज्तमा तो जिन लोगों को पता है वो पर जानते हैं मलेशिया इज्तमा की क्या हकीकत है, क्यों होता है वो मलेशिया इज्तमा, ठीक है ना। तो हमें भी इसकी कदर करने की जरूरत है, और इसका कदर करने का यही तरीका है, यही इससे फायदा उठाने का और इसको नुकसान से बचाने का तरीका है कि हम खुद अच्छे मुसलमान बने, ताकि ये माहौल जो अल्लाह ताला ने दिया है बहुत बेहतरी है, अब भी इतनी बुराइयों के बावजूद तालीमी निज़ाम भी बरतानिया का चल रहा है, मीडिया भी जो है वो कुफर का सारा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, लेकिन फिर भी जो आप वहां कर सकते हैं वो आप कहीं और नहीं कर सकते, इतने आसानी से नहीं कर सकते, बड़ों से पूछें तब बात समझ में आएगी, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।